एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय की हाँ गहराई में उतर रहे हैं जो कल की कल्पना लगता था, पर आज हमारी सच्चाई बनता जा रहा है, रोबोटिक्स।
हाँ, और इस सफर में हमारे गाइड होंगे प्रोफेसर एलन विनफील्ड। हम उनकी दो अहम किताबों रोबोटिक्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और रोबोटिक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी एंड एथिकल फ्रेमवर्क के सार के जरिए रोबोटिक्स की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल। और सवाल ये है कि आखिर ये रोबोट हैं क्या? क्या ये सिर्फ मतलब हॉलीवुड की देन है या हमारी जिंदगी बदलने वाली हकीकत?
ये सवाल आज बहुत अहम है। क्यों भला?
इसलिए क्योंकि रोबोट अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में नहीं है, वो निकलकर हमारे घरों, अस्पतालों, फैक्ट्रियों, यहाँ तक कि सड़कों पर आ चुके हैं।
हाँ, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें।
हाँ, या फिर वो सर्जरी करने वाले रोबोटिक आर्म्स। ये तकनीक आप देखिए कितनी तेजी से फैल रही है।
सही बात है।
तो इसलिए अब ये सिर्फ इंजीनियरों का काम नहीं रहा, हम सबको मतलब आम लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि भाई ये तकनीक क्या है, कैसे काम करती है।
और हमारे समाज और भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है।
बिल्कुल।
तो इससे पहले कि हम रोबोट्स की दुनिया में गोता लगाएं, थोड़ा जानते हैं उस शख्स के बारे में जिनके नजरिए से हम इसे देख रहे हैं। प्रोफेसर एलन विनफील्ड कौन है ये और इनकी बात सुनना क्यों जरूरी है?
देखिए, प्रोफेसर विनफील्ड कोई मामूली नाम नहीं है। वो ब्रिस्टल रोबोटिक्स प्रयोगशाला के सह संस्थापक हैं।
अच्छा।
जी हाँ, और यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में प्रोफेसर भी हैं। रोबोट एथिक्स पढ़ाते हैं।
रोबोट एथिक्स मतलब रोबोट से जुड़े नैतिक सवाल।
बिल्कुल। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की नैतिकता के क्षेत्र में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों में गिना जाता है। अब सोचिए, 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव है।
वाह। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते। आप कह रही थी कि वो खुद रोबोट बनाते हैं, उन पर प्रयोग करते हैं।
हाँ, यही तो खास बात है। उन्हें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल समझ भी है। वो जानते हैं कि एक रोबोट असल में क्या कर सकता है और उसकी सीमाएं क्या हैं। जमीनी हकीकत पता है उन्हें।
सही कहा, यही उन्हें खास बनाता है। वो एक रोबोटिस्ट भी हैं और एक एथिसिस्ट भी।
बिल्कुल। तकनीक बनाने वाले भी और उसके नैतिक पहलुओं पर सोचने वाले भी। वो तकनीक की बारीकियों को समझते हैं और साथ ही समाज पर उसके अच्छे बुरे असर का गंभीर विश्लेषण भी करते हैं।
इसीलिए शायद सरकारें और कंपनियां उनसे सलाह लेती हैं।
हाँ बिल्कुल। रोबोटिक्स से जुड़ी नीतियां बनाने में उनकी सलाह ली जाती है। उनका मकसद है जिम्मेदार रोबोटिक्स, ऐसी तकनीक जो इंसानियत के भले के लिए हो।
तो अब आते हैं उनकी किताबों के मूल सार पर। विनफील्ड हमें क्या बताना चाहते हैं रोबोटिक्स के बारे में? उनका मुख्य संदेश क्या है बेसिकली?
देखिए, विनफील्ड का सबसे बड़ा तर्क ये है कि रोबोटिक्स सिर्फ एक और तकनीकी खोज नहीं है। ये नहीं कि चलो एक और गैजेट आ गया।
तो फिर क्या है?
ये एक बुनियादी बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं। ये हमारे काम करने, जीने और शायद शायद खुद को समझने के तरीके को जड़ से बदल सकता है।
मतलब इतना गहरा असर।
हाँ, वो मानते हैं कि रोबोट्स में अपार संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने से लेकर पर्यावरण की रक्षा करने और यहाँ तक कि अंतरिक्ष की खोज तक।
लेकिन वो सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं बताते हैं ना। आपने कहा वो एथिसिस्ट भी हैं, तो चुनौतियों की तरफ भी इशारा करते होंगे।
बिल्कुल। वो साफ कहते हैं कि इन संभावनाओं के साथ गंभीर नैतिक, सामाजिक और आर्थिक सवाल भी जुड़े हैं।
जैसे
जैसे नौकरियां जाने का डर, जो आजकल बहुत सुनने में आता है, प्राइवेसी का खतरा, और ये कि अगर रोबोट कोई गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा?
हाँ, ये बड़े सवाल हैं।
और विनफील्ड कहते हैं कि इन सवालों पर हमें अभी से सोचना होगा, सोच समझकर कदम उठाने होंगे, इंतजार नहीं कर सकते।
तो एक तरह से विनफील्ड का मकसद रोबोटिक्स के इर्द गिर्द जो रहस्य का पर्दा है उसे हटाना है।
हाँ बिल्कुल। साइंस फिक्शन की उड़न तश्तरियों से निकालकर जमीनी हकीकत दिखाना। वो समझाते हैं कि रोबोट असल में क्या है, कैसे बनते हैं, उनकी तथाकथित बुद्धि कैसे काम करती है।
और सबसे अहम, वो कौन से नैतिक और सामाजिक मुद्दे खड़े करते हैं जिनका सामना हमें करना ही होगा।
हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किताबें आम लोगों के लिए हैं। जरूरी नहीं कि आपकी कोई टेक्निकल पृष्ठभूमि हो।
ये अच्छी बात है।
तौर पर मिलकर ये तय कर सकें कि हमें कैसी तकनीक चाहिए और उसका इस्तेमाल कैसे करना है।
और लक्ष्य क्या होना चाहिए?
लक्ष्य ये होना चाहिए कि रोबोट इंसानियत की भलाई करे, न कि उसके लिए खतरा बने।
चलिए अब कुछ बुनियादी बातों को और गहराई से समझते हैं। विनफील्ड के मुताबिक रोबोट की परिभाषा क्या है? जब हम रोबोट कहते हैं तो मतलब क्या होता है? क्या ये हमेशा इंसानों जैसे दिखने चाहिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी है। विनफील्ड जोर देते हैं कि रोबोट की पहचान उसके दिखने से नहीं, बल्कि उसके काम करने के तरीके से होती है।
काम करने के तरीके से?
हाँ, यहाँ वो एक जरूरी कॉन्सेप्ट बताते हैं, सेंस थिंक एक्ट। सेंस थिंक एक्ट।
सेंस थिंक एक्ट, STA।
जी, इसका मतलब है, पहला सेंस। रोबोट अपने आसपास के माहौल को महसूस करता है, जैसे कैमरे से देखना, माइक्रोफोन से सुनना।
ओके।
दूसरा थिंक।
थिंक।
उस जानकारी के आधार पर वो कुछ सोचता है या निर्णय लेता है। अब ये जरूरी नहीं कि बहुत जटिल सोच हो। और तीसरा एक्ट।
और फिर उस निर्णय के मुताबिक कोई भौतिक काम करता है,
जैसे चलना, कुछ उठाना या कुछ बोलना।
अच्छा।
यही एसटीए चक्र किसी मशीन को रोबोट बनाता है, चाहे वो फैक्ट्री का बड़ा सा रोबोटिक आर्म हो या घर में झाड़ू लगाने वाला छोटा सा वैक्यूम क्लीनर।
अच्छा, तो जरूरी नहीं कि वो इंसान जैसा दिखे या बहुत स्मार्ट हो, बस ये तीन काम करने चाहिए, सेंस थिंक एक्ट।
बिल्कुल। और आपने स्वायत्तता की बात की थी, क्या सारे रोबोट अपने आप काम करते हैं?
हाँ, मेरा मतलब था क्या वो खुद ही फैसले लेते हैं?
नहीं, ये भी एक स्पेक्ट्रम है, पूरी रेंज है। कुछ रोबोट पूरी तरह इंसानी कंट्रोल में होते हैं।
जैसे?
जैसे रिमोट से चलने वाले बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट, इंसानी उसे चलाता है।
ठीक है।
दूसरी तरफ कुछ काफी हद तक खुद फैसले ले सकते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार या मंगल ग्रह पर भेजा गया रोवर।
हाँ, वो तो खुद ही चलते हैं काफी हद तक।
सही।
ज्यादातर रोबोट्स इन दोनों छोरों के बीच में कहीं होते हैं, जहाँ इंसान और मशीन मिलकर काम करते हैं।
ये दिलचस्प है कि रोबोटिक्स की प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत प्रकृति रही है।
हाँ।
विनफील्ड बायोमिमिक्री की बात करते हैं, ये क्या चीज है?
हाँ, बायोमिमिक्री या बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक्स, ये कमाल की बात है। आप सोचिए, प्रकृति ने, मतलब एवोल्यूशन ने, लाखों सालों में कितनी बेहतरीन डिजाइन तैयार की हैं।
सही बात है।
कीड़े कैसे उबड़ खाबड़ जमीन पर भी चल लेते हैं, मछलियां पानी में कितनी आसानी से तैरती हैं।
हाँ?
पक्षी कैसे उड़ते हैं। रोबोट बनाने वाले इन डिजाइन से सीखते हैं, नकल करते हैं एक तरह से।
इसका कोई उदाहरण देंगे?
हाँ, विनफील्ड ब्राइटनबर्ग व्हीकल्स का जिक्र करते हैं।
ब्राइटनबर्ग व्हीकल्स, ये क्या है?
ये असल रोबोट नहीं है, मतलब एक वैचारिक प्रयोग है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट।
हाँ।
इसमें दिखाया गया है कि कैसे बहुत ही सीधे साधे कनेक्शन,
जैसे मान लीजिए एक सेंसर है जो रोशनी पकड़ता है और एक मोटर है जो पहिया घुमाता है, इन दोनों को बस जोड़ दिया, तो इससे भी ऐसा व्यवहार पैदा हो सकता है जो हमें लगे कि रोबोट सोच रहा है या उसके इरादे हैं।
अच्छा, कैसे?
जैसे अगर सेंसर रोशनी देखकर मोटर को तेज चलाए तो ऐसा लगेगा कि रोबोट रोशनी की तरफ भाग रहा है, या अगर रोशनी से दूर भागे तो लगेगा वो डर रहा है, जबकि असल में कोई जटिल सोच या भावना नहीं है।
वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात है। मतलब व्यवहार बुद्धिमान लग सकता है, भले ही उसके पीछे का सिस्टम बहुत सरल हो।
बिल्कुल, यही पॉइंट है।
तो प्रकृति से प्रेरणा लेकर रोबोट बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? ये सेंस थिंक एक्ट असल में होता कैसे? वो कौन से पुर्जे हैं जो रोबोट को रोबोट बनाते हैं?
विनफील्ड इन्हें रोबोट बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। मोटे तौर पर तीन हिस्से होते हैं जो एसटीए से जुड़े हैं।
ओके।
पहला सेंसिंग, ये रोबोट की इंद्रियां हैं, जैसे हमारे आंख, कान, त्वचा होती है, वैसे ही रोबोट के लिए कैमरे, माइक्रोफोन, लाइडार।
लाइडार, ये क्या होता है?
ये लेजर से दूरी नापने वाला सेंसर होता है, सेल्फ ड्राइविंग कारों में बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टच सेंसर, तापमान सेंसर वगैरह, ये दुनिया से जानकारी इकट्ठा करते हैं।
ठीक है, ये हो गया सेंसिंग। अगला?
अगला है कंट्रोलर, थिंकिंग। ये रोबोट का दिमाग है, ये एक छोटी सी माइक्रोचिप भी हो सकती है या एक पावरफुल कंप्यूटर भी। ये सेंसर से मिली जानकारी को प्रोसेस करता है और तयशुदा नियमों या एल्गोरिदम के आधार पर फैसले लेता है। यहीं पर सारा सॉफ्टवेयर काम करता है।
और तीसरा?
तीसरा है एक्चुएटर, एक्टिंग। ये रोबोट की मांसपेशियां हैं, ये वो हिस्से हैं जो हरकत पैदा करते हैं।
जैसे?
जैसे मोटर, पहिए, हाइड्रोलिक आर्म, ग्रिपर यानी पकड़ने वाला पंजा। कंट्रोलर से मिले आदेशों को ये एक्शन में बदलते हैं।
तो सेंसर्स ने देखा, कंट्रोलर ने सोचा, एक्चुएटर्स ने किया, एसटीए साइकिल पूरा हुआ।
बिल्कुल। यही है रोबोट का बेसिक ढांचा।
अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा कौतूहल जगाता है, रोबोट की इंटेलिजेंस या सोच। क्या ये इंसानों जैसी होती है? विनफील्ड इसे कैसे समझाते हैं?
देखिए, विनफील्ड बहुत साफ करते हैं कि रोबोट इंटेलिजेंस हमारे जैसी कॉन्शियसनेस या चेतना वाली इंटेलिजेंस नहीं है। ये भी एक स्पेक्ट्रम है। इसे हासिल करने के मोटे तौर पर दो मुख्य तरीके रहे हैं।
दो तरीके कौन कौन से?
पहला है डेलिब्रेटिव या टॉप डाउन, यानी विचारात्मक तरीका। यह पारंपरिक एआई जैसा है। इसे सेंस प्लान एक्ट भी कह सकते हैं।
सेंस प्लान एक्ट मतलब पहले देखो, फिर सोचो, प्लान बनाओ, फिर करो।
हाँ, इसमें रोबोट पहले अपने आसपास की दुनिया का एक पूरा नक्शा या मॉडल बनाता है, फिर उस पर सोच विचार कर एक पूरी योजना तैयार करता है और फिर उस योजना पर काम करता है।
ये तो लॉजिकल लगता है।
हाँ, ये उन कामों के लिए ठीक है जहाँ माहौल ज्यादा बदलता नहीं, लेकिन ये धीमा हो सकता है और अगर माहौल अचानक बदल जाए तो बेचारा रोबोट गड़बड़ा सकता है। 1960 के दशक का मशहूर शेकी रोबोट इसका क्लासिक उदाहरण है।
अच्छा, और दूसरा तरीका?
दूसरा है रिएक्टिव बॉटम अप, यानी प्रतिक्रियाशील तरीका। इसे MIT के रॉडनी ब्रूक्स ने लोकप्रिय बनाया। इसे सबसम्पशन आर्किटेक्चर कहते हैं।
सबसम्पशन आर्किटेक्चर
ये क्या है?
इसमें दुनिया का कोई बड़ा मॉडल या नक्शा नहीं बनता। इंटेलिजेंस सीधी सरल व्यवहार की परतों से उभरती है।
परतों से मतलब?
जैसे सबसे निचली परत हो सकती है टकराव से बचो, उसके ऊपर इधर उधर घूमो, उसके ऊपर किसी चीज की तरफ बढ़ो। हर परत का सीधा कनेक्शन सेंसर और एक्चुएटर से होता है, वो बस रिएक्ट करते हैं।
तो ये ज्यादा तेज होगा?
हाँ, ये बदलते माहौल में ज्यादा मजबूत और तेज साबित होता है। कुछ कुछ कीड़ों के व्यवहार जैसा, वो ज्यादा सोचते नहीं, बस रिएक्ट करते हैं। तो मतलब आज के ज्यादातर रोबोट शायद इन दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करते होंगे।
बिल्कुल सही। आजकल ज्यादातर हाइब्रिड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता है, जो जरूरत के हिसाब से प्लानिंग और रिएक्टिव व्यवहार दोनों का तालमेल बिठाते हैं।
समझ गया। अब रोबोट सिर्फ लैब या फैक्ट्री में बंद नहीं है, वो हमारे बीच आ रहे हैं, हमारे घरों में, दफ्तरों में। ऐसे में इंसान और रोबोट का तालमेल, मतलब मानव रोबोट इंटरैक्शन, HRI बहुत जरूरी हो जाता है। इस बारे में विनफील्ड क्या कहते हैं?
ये बहुत ही अहम और दिलचस्प एरिया है। विनफील्ड एंथ्रोपोमोर्फिज्म की बात करते हैं।
एंथ्रो क्या?
एंथ्रोपोमोर्फिज्म। ये हमारी इंसानी आदत है कि हम जानवरों या चीजों में भी इंसानी गुण, भावनाएं या इरादे देखने लगते हैं।
हाँ हाँ, जैसे अपने पेट को समझदार कहना या कार को नखरीली बताना।
बिल्कुल। डिजाइनर इस चीज का इस्तेमाल रोबोट को ज्यादा अपना सा और इस्तेमाल में आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर रोबोट थोड़ी आंखें झपका ले या मुस्कुरा दे तो हमें लगता है वो फ्रेंडली है।
लेकिन क्या इसका कोई उल्टा असर भी हो सकता है?
हाँ, यहीं पर अनकैनी वैली का कॉन्सेप्ट आता है।
अनकैनी वैली, अजीब घाटी।
हाँ, एक तरह से ये कहता है कि जब कोई रोबोट लगभग इंसान जैसा दिखने लगता है पर पूरी तरह नहीं, तो वो हमें प्यारा या अपना सा लगने के बजाय अजीब, डरावना या असहज महसूस करा सकता है।
ओ हाँ, मैंने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो थोड़ी क्रीपी लगती हैं।
बिल्कुल। इसलिए रोबोट का डिजाइन बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। MIT का किस्मत रोबोट, जो चेहरे के हाव भाव दिखा सकता था, HRI रिसर्च का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे रोबोट को सामाजिक संकेत समझने और दिखाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है बिना अनकैनी वैली में गिरे।
हमने रोबोट के काम करने के तरीके, उनकी सोच और इंसानों से उनके रिश्ते पर बात की। विनफील्ड अलग अलग तरह के रोबोट्स और उनके इस्तेमाल पर भी बात करते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, वो कई उदाहरण देते हैं, जैसे औद्योगिक रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जिन्होंने फैक्ट्रियों में उत्पादन का तरीका ही बदल दिया।
हाँ, कार फैक्ट्रियों में तो बहुत दिखते हैं।
सही। फिर है सर्विस रोबोट्स जो घरों में मदद करते हैं, जैसे रोबोट वैक्यूम क्लीनर या अस्पतालों में दवा पहुंचाने वाले रोबोट।
और सेल्फ ड्राइविंग कारें, वो भी रोबोट हैं?
हाँ, वो स्वायत्त वाहन, ऑटोनोमस व्हीकल्स की श्रेणी में आते हैं, कारें, ड्रोन्स, ये सब। फिर सैन्य और सुरक्षा रोबोट हैं, जिनके इस्तेमाल पर बहुत नैतिक बहस चलती है।
और वो भी तो हैं जो खतरनाक जगहों पर जाते हैं।
हाँ, वो रोबोट जो बेहद खतरनाक माहौल में काम करते हैं, जहाँ इंसान नहीं जा सकते, जैसे गहरे समुद्र में, अंतरिक्ष में या न्यूक्लियर प्लांट के अंदर।
क्या कुछ नए तरह के रोबोट्स का भी जिक्र है, कुछ फ्यूचरिस्टिक?
हाँ, वो स्वॉर्म रोबोटिक्स की बात करते हैं।
स्वॉर्म, झुंड।
हाँ, जहाँ चींटियों या मधुमक्खियों की तरह बहुत सारे छोटे छोटे सस्ते रोबोट्स मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं किसी बड़ी समस्या को हल करने के लिए।
अरे वाह।
और सॉफ्ट रोबोटिक्स, जिसमें नरम लचीले मटेरियल से रोबोट बनाए जाते हैं जो इंसानों के साथ काम करने में ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं क्योंकि वो सख्त मेटल के नहीं होते।
ये तो काफी कुछ है।
इस पूरी बातचीत से रोबोटिक्स के बारे में कुछ बड़े सबक या मुख्य संदेश क्या निकलते हैं विनफील्ड के काम के आधार पर?
मेरे ख्याल से पहला और बहुत जरूरी सबक ये समझना है कि स्वायत्तता एक स्पेक्ट्रम है,
ऑटोनॉमी स्पेक्ट्रम।
हाँ, ये हमने बात की थी।
हाँ, ऐसा नहीं है कि रोबोट या तो पूरी तरह हमारे काबू में है या पूरी तरह आजाद, ज्यादातर कहीं बीच में है। ये समझना जरूरी है ताकि हम उनसे यथार्थवादी उम्मीदें रखें, न ज्यादा डरें न ज्यादा उम्मीद पालें।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, एम्बॉडीड इंटेलिजेंस का विचार।
एम्बॉडीड इंटेलिजेंस, शरीर वाली बुद्धि?
हाँ, मतलब रोबोट की समझ सिर्फ उसके प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में नहीं है, बल्कि उसके शरीर और दुनिया के साथ उसके इंटरैक्शन से पैदा होती है। वो दुनिया को महसूस करके, उसमें हरकत करके सीखता है एक तरह से। ये सिर्फ कंप्यूटर में बैठे AI से अलग है।
ये इंटरेस्टिंग है। तीसरा?
तीसरा, रोबोटिक्स सिर्फ तकनीक नहीं, एक सामाजिक तकनीक है, सोशल टेक्नोलॉजी। इसकी कामयाबी सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि रोबोट कितना अच्छा काम करता है।
तो किस पर करती है?
इस पर भी कि समाज उसे कैसे अपनाता है, वो हमारी संस्कृति और मूल्यों से कितना मेल खाता है, और उसका लोगों की जिंदगी पर, रोजगार पर क्या असर पड़ता है। भारत जैसे देश में ऑटोमेशन का नौकरियों पर क्या असर होगा, ये सोचना बहुत जरूरी है।
सही कहा। चौथा पॉइंट?
चौथा और शायद सबसे ज्यादा जोर देने वाली बात, नैतिक अनिवार्यताएं, एथिकल इम्पेरेटिव्स।
एथिक्स?
हाँ, विनफील्ड बार बार कहते हैं कि नैतिकता यानी एथिक्स को रोबोट डिजाइन और डेवलपमेंट की शुरुआत से ही शामिल करना होगा। ये कोई बाद में जोड़ने वाली चीज नहीं है। जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट बाद में नहीं लगाते, डिजाइन में ही होता है।
अच्छा उदाहरण है।
हमें पहले से सोचना होगा कि रोबोट के फैसलों का क्या असर होगा और उनके लिए नियम कैसे बनाए जाए।
और पांचवा?
और पांचवा, मानव केंद्र डिजाइन, ह्यूमन सेंटर डिजाइन। मतलब तकनीक को हमारी जिंदगी तय नहीं करनी चाहिए, हमें तकनीक को ऐसा बनाना चाहिए कि वो हमारे लक्ष्यों और मूल्यों को पूरा करे।
मतलब इंसान पहले, तकनीक बाद में। यकीनन कुछ ऐसी बातें होंगी जो दिमाग में अटक जाती हैं, कुछ यादगार विचार या पंक्तियाँ।
हाँ बिल्कुल है। एक तो उनकी रोबोट की परिभाषा ही बहुत सीधी और सच्ची है। एक रोबोट वह मशीन है जो महसूस कर सकती है, सोच सकती है और कार्य कर सकती है, लेकिन सोचने वाले हिस्से का बहुत स्मार्ट होना जरूरी नहीं है।
हाँ, ये बात हमारी कल्पनाओं को थोड़ा जमीन पर लाती है। उपयोगी होने के लिए सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं।
सही। एक और विचार जो मुझे बहुत दमदार लगा, सवाल ये नहीं है कि क्या रोबोट हमारी नौकरियां ले लेंगे, बल्कि ये है कि हम रोबोट और समाज को कैसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि तकनीकी प्रगति से सभी को लाभ हो।
वाह, ये जिम्मेदारी हम पर डालता है। भविष्य तयशुदा नहीं है, हम उसे बना सकते हैं।
बिल्कुल। और विश्वास पर उनकी ये बात भी गहरी है। रोबोट पर विश्वास रोबोट के बारे में नहीं है, ये उन मनुष्यों के बारे में है जिन्होंने इसे डिजाइन किया, बनाया और तैनात किया।
मतलब अगर कोई सेल्फ ड्राइविंग कार दुर्घटना करती है तो दोष कार का नहीं,
बल्कि उसे बनाने वाले इंसानों, कंपनियों और शायद नियमों का भी है। जवाबदेही हमेशा इंसानों की ही रहेगी।
और ये भी बात प्रैक्टिकल बात है, सबसे सफल रोबोट वो नहीं है जो इंसानों जैसे दिखते हैं, बल्कि वो हैं जो इंसानों के लिए सबसे उपयोगी हैं।
हाँ, जोर काम आने पर होना चाहिए, न कि सिर्फ इंसानी नकल बनाने पर। फैंसी दिखने से ज्यादा जरूरी है कि वो काम का हो।
सही। और नैतिकता पर कोई खास बात?
आखिर में नैतिकता पर ये चेतावनी बहुत जरूरी है। व्याख्या करने योग्य रोबोटिक्स कोई विलासिता नहीं है, ये उन रोबोटों के लिए एक आवश्यकता है जो मानव कल्याण को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते हैं।
व्याख्या करने योग्य?
एक्सप्लेनेबल।
मतलब?
मतलब अगर कोई रोबोट ऐसा फैसला ले रहा है जिसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, जैसे लोन देना या नहीं, या मेडिकल डायग्नोसिस में मदद करना, तो हमें ये जानने का हक है कि उसने वो फैसला क्यों और कैसे लिया। वो ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता जरूरी है।
ये सब बातें बहुत सोचने वाली हैं। अब सवाल यह है कि हम इन विचारों का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें, इनसे हमें क्या सीखना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। सबसे पहली बात मेरे ख्याल से हम सब जागरूक उपभोक्ता और नागरिक बने।
कैसे?
जब हम किसी नए गैजेट या सर्विस के बारे में सुने जिसमें एआई या रोबोटिक्स का इस्तेमाल हुआ हो, तो हम थोड़ा सोचें, क्या ये सच में उतना स्मार्ट है जितना बताया जा रहा है? क्या इसकी वाकई जरूरत है? क्या इसके कोई छुपे हुए खतरे हो सकते हैं? सिर्फ मार्केटिंग या हाइप पर ना जाएं।
सही बात है। दूसरा?
दूसरा, हम सार्वजनिक चर्चाओं में हिस्सा लें। जब ऑटोमेशन, नौकरियों, सेल्फ ड्राइविंग कारों की सुरक्षा या ड्रोन की प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर बहस हो,
जो आजकल खूब होती है,
हाँ, तो हम सुनी सुनाई बातों या डर के आधार पर नहीं बल्कि थोड़ी जानकारी के साथ अपनी राय रख सकते हैं। हम सही सवाल पूछ सकते हैं, पर इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, नियम क्या होने चाहिए। हमारी आवाज मायने रखती है।
और जो लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं,
इंजीनियर, डिजाइनर, कंपनियां, उनके लिए मानव केंद्रित और नैतिक डिजाइन सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए।
मतलब
उन्हें सोचना होगा कि उनके बनाए रोबोट का इस्तेमाल असल दुनिया में कैसे होगा, लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा, कहीं वो अनजाने में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, अनकैनी वैली जैसी चीजों का ध्यान रखना होगा और नैतिकता को प्रोडक्ट डिजाइन का हिस्सा बनाना होगा शुरू से ही, सिर्फ कानूनी खानापूर्ति नहीं।
और जो लोग नीतियां बनाते हैं, सरकारें वगैरह,
उनके लिए ये साफ है कि एक नियम सब पर लागू वाला रवैया नहीं चलेगा।
क्यों?
क्योंकि रोबोट बहुत तरह के होते हैं। एक खिलौना रोबोट और एक सर्जिकल रोबोट के लिए एक जैसे नियम नहीं हो सकते। उनकी क्षमता और जोखिम के हिसाब से अलग अलग नियम और सुरक्षा मानक बनाने होंगे। कॉन्टेक्स्ट जरूरी है।
और शिक्षा के बारे में?
शिक्षा में भी इसका महत्व है। रोबोटिक्स सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग का विषय नहीं है, इसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून और नैतिकता सब शामिल हैं। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को सिर्फ कोडिंग ही नहीं सिखानी चाहिए
बल्कि तकनीक के सामाजिक और नैतिक पहलुओं के बारे में भी सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। सिस्टम थिंकिंग जरूरी है।
बिल्कुल।
इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से आपके लिए सबसे अहम सीख क्या रही? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख यह है कि रोबोटिक्स का भविष्य तकनीक के हाथ में नहीं, हमारे अपने हाथ में है। ये पहले से तय ही है कि रोबोट्स दुनिया पर कब्जा कर लेंगे या हमारी सारी समस्याएं सुलझा देंगे।
तो किस पर निर्भर है?
ये इस पर निर्भर करेगा कि हम इंसान कितने सचेत, कितने जिम्मेदार और कितने दूरदर्शी होकर इस तकनीक को बनाते और अपनाते हैं। ये सिर्फ मशीनें बनाने का मामला नहीं है, ये एक तरह से हमारे अपने मूल्यों और भविष्य की हमारी अपनी दृष्टि का आईना है।
बहुत खूब कहा। और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई वो ये है कि 21वीं सदी में आप कह सकते हैं रोबोटिक साक्षरता उतनी जरूरी होती जा रही है जितनी पढ़ना लिखना जानना।
हाँ, ये कह सकते हैं।
इन मशीनों को समझना, ये कैसे काम करती हैं, इनकी क्या मायने हैं, ये जानना अब सिर्फ शौक की बात नहीं रही, ये एक जरूरत बन गई है अगर हम अपने भविष्य से जुड़े फैसलों में अपनी आवाज रखना चाहते हैं।
सही।
और विनफील्ड का काम हमें इस समझ का आधार देता है। और हाँ, जैसा आपने कहा, सबसे बड़ी चुनौतियां शायद तकनीक में नहीं बल्कि हम इंसानों की समझ, हमारी नैतिकता और हमारे आपसी सहयोग में हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।